चलिए जी, आयत नंबर 11 को देखते हैं। तो यहाँ से अब बस सब्र के साथ सुनते जाइए और ये मौजू समझ ही तब आता है कि जो बात कही जा रही है बस उसको समझें, ना उसके इधर सोचें ना इधर सोचें, वरना फिर बाज़ दफ़ा जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हम सोचते हैं तो उसकी वजह से समझना मुश्किल होता है। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, हुक्म देता है अल्लाह तुमको तुम्हारी औलादों के मामले में। लफ्ज़ देखिए कितना खूबसूरत है, दिल सोजी वाला अंदाज़ है। अल्लाह तुमको तुम्हारी औलादों के बारे में हुक्म देता है। इससे पहली बात तो ये पता चलती है कि अल्लाह ताला हमसे हमारे वालदैन की निस्बत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला ने इस संदेशे को रफ़ा कर दिया कि कहीं कोई माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर जुल्म ना कर दें, तो यहाँ हुक्म दे दिया किस बात का। और लफ्ज़ यूसी में वसी का लफ्ज़ है, वो स्वाज्या अहम चीज़ को कहते हैं। हमारे यहाँ वसीयत अमूमन मौत के वक्त की बात को कहते हैं, लेकिन अरबी ज़ुबान में वसीयत से मुराद अहम बात होती है। और ये मामला जो सरासर एक निजी मामला था, घरेलू मामला था, अल्लाह ताला ने उसमें मुदाखलत करके इंटरफेरेंस करके इस बात को साबित कर दिया कि इस्लाम जो है वो सिर्फ़ नमाज रोज़े का तरीका ही नहीं बताता, या किसी मुआशरे के अंदर इस्लाम का पता सिर्फ़ वहाँ की नमाजों और मस्जिदों से नहीं पता चलेगा, बल्कि वहाँ के ख़ानदानी निज़ाम, ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके और माल की तकसीम पर भी इसका ताल्लुक होगा। फिर फ़ी औलादिकुम के लफ्ज़ में औलाद का लफ्ज़ है जो बेटे और बेटी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलादों के बारे में हुक्म देता है। क्या हुक्म देता है? लिज़्ज़करी, मर्द के लिए। यहाँ ज़कर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ज़कर वैसे तो मुज़क्कर को कहते हैं, हमारे यहाँ लफ्ज़ मुज़क्कर भी इसी से है, ज़ाल काफ़रा से मुराद यानी मर्द, मेल जो भी होते हैं, लेकिन यहाँ ज़कर से मुराद बेटा है, क्योंकि हर सूरत में ये कानून नहीं होगा। यहाँ लिज़्ज़करी में मुराद है बेटे के लिए, लड़के का, बेटे का हिस्सा कितना है? मिसलु मानित, लाइक हज़्ज़िल उन्सयैन, हिस्सा दो लड़कियों का। उन्सयैन, उन्सा से तस्निया है, उन्सा कहते हैं बेटी को, लड़की को। यहाँ क्या बता दिया कि अल्लाह ताला तुम्हें क्या बताता है कि जब कोई शख्स फौत हो तो उसके छोड़े हुए माल में से उसके बेटे और बेटियों को किस हिसाब से माल मिलेगा? लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। यहाँ आप नंबर वन लगाइए या ए लगा लें लिज़्ज़कर से पहले। इस आयत में हम तीन चार मुख्तलिफ़ केसेस पढ़ेंगे। ये जो असूल है ना, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, इसके नीचे लिखिए जब मरने वाले के बहुत सारे बेटे और बेटियां हों। रैंडम होते हैं ना, कभी दो बेटे तीन बेटियां, कभी तीन चार पाँच, वट सो एवर। ये कौन सी सूरत है? जब मरने वाले के बेटे भी हों और बेटियां भी हों, एक है, दो है, चार, दस है, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस सूरत में बांट का क्या तरीक़ा है कि हर बेटे को दो बेटियों के बराबर मिलेगा। यहाँ देखिए, ये नहीं कहा कि बेटी को आधा मिलेगा, बल्कि कहा कि बेटी को तो पूरा मिल रहा है, तो बेटे को उससे दुगना मिल जाएगा। मिसाल ले लीजिए कि अगर एक शख्स फौत हो रहा है, अपने पीछे $1,000 छोड़ के मर रहा है, सारी चीज़ों को अलग कर दें, अभी जो आगे आने वाली है साइड पे, हम उसकी ये दौलत उसके बेटों और बेटियों में बांटना चाहते हैं। उसका एक बेटा और एक बेटी है, 100 के तीन हिस्से किए जाएंगे, 33.33 यानी 33 रुपये 33 पैसे जो हैं एक बेटी को दे दिए जाएंगे, और 33 + 33 यानी 66.66 जो है वो दूसरे बेटे को दे दिए जाएंगे। यानी जब कोई मरने वाला मरे और अपने पीछे बेटे और बेटियां दोनों छोड़े, हर बेटे को दो से शुमार किया जाएगा। चार बेटे ना किसी के, तो चार चार को आठ कर लेंगे, और बेटियां थी तीन, तो तीन को बस तीन ही रख लेंगे। तो इस सूरत में रेशो क्या बना? 2:1 का, दुगना मिल रहा है हर बेटे को बेटी का। लिख लें फिर बाद में इसको समझेंगे। ये था पहला केस। दूसरी सिचुएशन, और वो क्या, फइन कुन्न निसान, बस अगर हों बेटियां, कितनी, फोकस नतैन, दो से ज्यादा, तो फल हुन्न सुलुसा मा तरक, तो उनके लिए है दो तिहाई जो उसने छोड़ा। ये है सेकंड केस। इसके इससे पहले बी लिख लेते। ये है वो सूरत के मरने वाला दो या दो से जायद बेटियां छोड़ के मरा। कभी ऐसा होता है ना, किसी की सिर्फ दो ही बेटियां होती हैं या तीन बेटियां या चार बेटियां। ये वो सूरत है कि मरने वाला का बेटा कोई नहीं है, तो उसकी दौलत कैसे तकसीम होगी उसकी बेटियों में। उसके $100 को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, 33, 33, 33.33। सुलुसा क्या होते हैं, टू थर्ड, यानी 100 में से दो तिहाई कितने होते हैं, 66। तो वो 66 जो डॉलर है ना, वो दो बेटियों हैं तो दो में आधे आधे दे दिए जाएंगे 33, तीन बेटियां हैं तो 66 को तीन हिस्सों में डिवाइड कर लें तो 22.22 सबको दे दिए जाएंगे। चार हैं या दस हैं या बीस हैं, वो 66 रुपीज़ जो हैं या डॉलर हैं वो उसकी सारी बेटियों को मिलेंगे। आपके दिन में अभी फ़ौरन सवाल आएगा कि बाकी 33 का क्या होगा, उसको छोड़ दें अभी, ठीक है। आगे चलें, तीसरा केस, नंबर थर्ड। वइन कानत वाहिदतन फलहन्नस, ये तीसरा केस है कि मरने वाले की बस एक ही बेटी है, अकलौती एक बेटी, वाहिदा। हमारे यहाँ कहते हैं ना, लाखों की अकलौती वारिस, रिश्तों में भी लिखा होता है अकलौती चाहिए हैं। तो ये अकलौती को कितनी जायदाद मिलेगी बाप की, पूरी नहीं मिलती, आधी मिलती है। 100 या 1000 का जो भी रेशियो हम समझ रहे थे, एक ही बेटी है, 100 के याद करेंगे तो 50, तो इसको 50 मिल जाएंगे, बाकी 50 को छोड़ दें आप अभी, ठीक है। यहाँ तक बस ख़त्म। आप देखिए कि सिर्फ 2.5 लाइनें बनती हैं, बेटों और बेटियों की विरासत की हर मुमकिन बांट कर दी। कोई मरता है तो या चार सूरतें हो सकती हैं। नंबर एक, कि औलाद है ही नहीं, चलो बात ही ख़त्म, उसको एक तरफ कर दें। दूसरी सूरत है कि बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं, उसके लिए क्या बांट है, हर बेटे को बेटी का दुगना मिलेगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक एंड पे न्यूमेरिकल इधर करके भी दिखा देती हूँ, यानी जिसको हिसाब के सवाल कहते हैं हम। लेकिन पहले ये पूरा टॉपिक समझ लें। जब बेटे और बेटियां घुले मिले हैं, एक है, दो है, चार है, दस है, छः, नो प्रॉब्लम। हर बेटे को दो से ज़र्ब दे लें और हर बेटी को एक से जमा कर लें। मिसाल है किसी के तीन बेटियां और पांच बेटे हैं और उसने $100 छोड़े, तो आप क्या करेंगे, तीन बेटियां 1, 2, 3 और पांच बेटे हैं ना, तो हर बेटे को दो, फिर दो, फिर दो, फिर दो, फिर दो, टोटल कितने हिस्से हो गए मरने वाले की जायदाद के, 12 और 13। 13 हिस्से करेंगे उस $100 के, और जितने हिस्से बनेंगे ना उसमें से एक एक हिस्सा तो तीन बेटियों को दे देंगे, बाकी जो पीछे रह जाएंगे 10 हिस्से उनमें से दो दो हिस्से हर बेटे को दे देंगे, ठीक है। आप कहेंगे ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, बड़ा जुल्म है, बड़ी ज्यादती है, यही तो हम रोते हैं ना, ज़िंदगी में हक मिले मरने के बाद भी ना मिले। तो यहाँ एक छोटी सी बात समझ लें कि इस्लाम में विरसे की जो बांट है ना, उसके कुछ असूल हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। उसमें एक असूल क्या है, कराबत, रिश्तेदारी। जो जितना करीबी होगा ना उतना ज़्यादा उसका हिस्सा ज़्यादा होगा। मसलन मरने वाले की सबसे ज़्यादा करीबी चीज़ जो है ना, वो उसकी औलाद है, इवन माँ बाप भी उसके बाद होते हैं। जब अपनी औलाद होती है ना किसी की, तो फिर भाई बहनों को हिस्सा नहीं मिलता, ठीक है, माँ बाप को मिलेगा। दोनों सूरतों में अगले हिस्से में माँ बाप के हिस्सों की बात आ रही है। अब देखिए कि बेटों और बेटियों में ये जो फ़र्क रखा गया, इसकी हिकमत समझ लें। पहली बात, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह इतना भी ना देता। ज़रा उस दौर को भी तो सामने रखे ना, कि जहाँ औरत बल्कि बिकती थी या उसको विरासत में बांटते थे, उस औरत को अगर अल्लाह ताला एक हिस्सा भी दे रहा है तो ये गनीमत है। दूसरी बात यह है कि बेटे के ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं। दूसरा असूल लिख लें विरासत की तकसीम का, ज़रूरत, नीड। मसलन आप देखिए कि यंग बहन भाई बहन थे, बाप का इंतकाल हो गया, दोनों अनमैरिड है, अब लड़की को उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस्लाम में जो मर्द या लड़का होता है उस पर जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो उसको भाई को भी बहन को भी देखना है, घर वालों को भी देखना है, माँ को भी देखना है, घर का खर्चा भी वही लाएगा। कल बहन की शादी का मौका आएगा, ये भाई अपनी बहन की शादी करेगा, हालांकि उसका खर्चा तो दूसरी तरफ आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो खर्च उठता ही है। अब ये बहन इधर से बाप की जायदाद में से भाई से आधा भी ले चुकी है, दूसरी तरफ इसको मिलेगा अपने शौहर से हक महर। मिसाल है कि चले 100 ही की बात कर लेते हैं, एक मर्द फौत हुआ, $100 छोड़ के गया, 33 यानी 33 बेटी को मिल गए, 66 बेटे को मिल गए। अब 33 औरत के जो मिले वो महफूज हैं कि नहीं, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं। वो भी जाते वैसे मर्दों ही के पास है, उस मर्द का नाम होता है ज्यूलर और उस मर्द का नाम होता है कुछ बोलूं हर के ना, औरतों के पास जितना पैसा है ना वो भी मर्दों ही के पास जाता है, अपने मर्द से छीन छान के लेती हैं और दूसरों के मर्दों को दे के आ जाती हैं। हाँ, तो अब आप देखिए कि औरत ने तो वो 33 संभाल लिए, कल शादी का मौका आया, उसकी शादी के फिर खर्च भी कुछ ना कुछ उठा तो भाई ने किया। अब ये लड़की गई अपने ससुराल, शादी हुई, मर्द ने इसको हक मेहर में फिर 33 दे दिए, बिल फर्जा हमारे वाले जो मशहूर है, तो इसके पास कितने हो गए? इसका 66 हो गए ना, 33 बाप की जायदाद के थे, 33 शौहर से हक मेहर में मिल गए। चलिए आप जरा मसलूम भाई को देखिए, जिसको 66 मिले थे उसको 66 मिले, चले उसमें से उसने 33 बहन के शादी पे और घरदारी के खर्चों पे लगा दिए, पीछे क्या बचा? 33। कल अपनी भी तो शादी करेगा, वो 33 दे देगा अपनी बेगम को, उसके हाथ में क्या रहा? जुल्म किसके साथ हो रहा है? जुल्म तो किसी के साथ नहीं हो रहा, लेकिन इस्लाम में देखिए कि अल्लाह सुभान व तआला ने कितनी प्यारी बांट रखी कि मर्द कफील होता है, मर्द ना नफके का मालिक होता है, लिहाजा ज़रूरियात देखी जाती हैं, मर्दों को बाहर निकलना होता है, उनकी ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा मामलात होते हैं, इसलिए औरत को कम दे के उसको भी खुश कर दिया कि तुम ले लो कुछ, वैसे तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस्लाम तुम्हें भी देता है, लेकिन लड़के को दुगना देता है। ठीक है, फिर एक तीसरा असूल भी याद रखिएगा माल की तकसीम का विरासत में, वो क्या है? दौलत की तकसीम, तकसीम दौलत। इस्लाम ये नहीं चाहता कि दौलत चंद हाथों में सिमट आए और आप खजाने का सांप बन के बैठ जाएं और हिले ना और झुले ना। इस्लाम के इस असूल में दौलत की तकसीम कैसे, मिसाल देती हूँ, अभी आप देखेंगे तो बड़ी दिलचस्प स्टोरी आपके सामने आएगी। एक शख्स है, चले उसके पास 10 लाख रुपए हैं, बहुत रईस साहब हैं। अब कोई उनके घर में मौका आ जाता है रिश्तेदारों के आने का जाने का, अमूमन किन को देना मुश्किल लगता है? वैसे अक्सर को नहीं लगता, लेकिन मिसाल दे देते हैं, बीवी के मैके को देना बड़ा मुश्किल लगता है, उनके लिए दावत भी पकती है तो वो बोझ लगती है। सास, मिसाल ले लेते हैं एक मर्द की सास, उसको ये बड़ा बुरा लगता है कि मेरी बीवी अपने माँ बाप को कुछ दे या मैं दूँ। चलिए ख़त्म हो गई बात, वो उसके एक वक्त के खाने का भी पूछता है, क्यों खिलाया, ये दिया वो दिया। अब वो शख्स 10 लाख रुपए छोड़ रहा है, 10 लाख जब वो मरता है उसका औलाद होने की सूरत में 8वां हिस्सा बीवी को मिलेगा, जो अगली आयत 12 में मिलेगा हमें हिस्सा, यानी बीवी को हिस्सा मिलेगा ना। अब वो बीवी को जब हिस्सा मिल गया उस शोहर से, गोया कि उसके मिसाल है कि 10 लाख में से बीवी को 8वां हिस्सा या जितना भी मिला, अब वो उसकी बीवी ने कुछ अरसा इस्तेमाल किया, ख़त्म किया, वट एवर, कुछ अरसे के बाद उसकी बीवी का भी इंतकाल हुआ, अब बीवी के छोड़े हुए माल में से उसकी माँ को कितना मिलेगा? उतना ही मिलेगा जितना मर्द के मरने पे उसकी माँ को मिलता है, 1/6 मिलेगा। तो ये 1/6 किसको मिला? उस पहले मरने वाले की समधन को मिला। बात वाज़े कि बहुत उलझ गई, यानी ज़िंदगी में जिन लोगों का आप एक जोड़ा भी नहीं खुशी से दे सकते ना, वो आपके मरने के कुछ साल के अंदर अंदर आपकी आधी से ज़्यादा जायदाद भी ले चुके होते हैं। लेकिन ये बात आपको अभी इसलिए समझ नहीं आ रही कि आपने अगला हिस्सा नहीं आयत का पढ़ा, इसलिए बेहतर है कि इधर उधर जाए बगैर सीधा सीधा चलते रहें। मर्द को बेटे को बेटी से दुगना मिलेगा, इतनी बात किसको समझ आ गई है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अब दूसरी सूरत ये होती है मरने वाले के कि उसकी सिर्फ बेटियाँ ही हों, बेटियाँ ही हों, बेटा कोई ना हो, ये पॉसिबल है ना? उसकी दूसरी मिसाल दे दी, फ़ाइन कुन्न निसान फोकस न तईन। यहाँ लफ्ज़ फोकस न तईन है दो से ज़ायद, लेकिन हदीस से पता चलता है कि दो के लिए भी यही हुक्म है। दूसरी सूरत के कि बहुत सारी बेटियाँ हों तो क्या किया जाएगा, उसकी पूरी जायदाद को तीन हिस्सों में तकसीम किया जाएगा और उन तीन में से दो हिस्से इन सारी बेटियों में बराबर बढ़ जाएंगे। एक हिस्सा किधर जाएगा, ये इसके बाद वालों पे जाएंगे, यानी इस्लाम के अंदर अल अक्रब मिन अल अक्रब की बात है। जब बेटा हिस्से में नहीं होता ना, जैसे किसी मरने वाले का अगर बेटा नहीं होता तो फिर उसकी जायदाद थोड़ी दूर तक बढ़ती है, चचाओं तक भी किसी सूरत में पहुंच जाती है, दादा को ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन बस आप समझ लें कि बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा बाप की छोड़ी हुई जायदाद में से जो मिल सकता है वो दो तिहाई मिल सकता है। तीसरी सूरत क्या हो सकती है कि मरने वाला बस एक ही बेटी छोड़ के मरे, तो उसका जवाब अगली आयत के हिस्से में, आयत के अगले हिस्से में आया, व इनकानत वाहिदतन, अगर वो एक हो तो फलाहन्निस, तो उसके लिए याद है। एक चौथी क्या सूरत हो सकती है जिसका यहाँ तस्करा नहीं लेकिन वो बहुत ऑब्वियस है कि मरने वाला एक ही बेटे को छोड़ के जाए, तो जब एक बेटा होगा ना तो उसको पूरी जायदाद मिल जाएगी, क्योंकि लिस जकरी मिसलु हज़्ज़ल उनसा, यही इनमें जिक्र हुआ। फिर दोहराती हूँ, मरने वाला बहुत सारे बेटे और बेटियाँ छोड़े तो 1/2 के रेशो से लड़कों और लड़कियों में बढ़ जाएगा। मरने वाला सिर्फ बेटियां छोड़े दो से जायद तो पूरी जायदाद के दो तिहाई को बेटियों में बराबर तकसीम कर दिया जाएगा। तीसरी सिचुएशन, मरने वाला सिर्फ एक बेटी छोड़े तो बाप की पूरी जायदाद को दो हिस्सों में बांट के आधी इसको दे दी जाएगा और आधी फिर उसके उसबा और जविल फरूज और दूर के रिश्तेदारों को जाएगी। ठीक है, चौथी सूरत है कि बस एक ही बेटा है तो फिर उसको पूरी जायदाद मिल जाएगी। ठीक है, बस यहाँ तक समझ के अब आगे चलें। आयत का जो अब हिस्सा शुरू हो रहा है, इससे ऊपर आप एक सब टॉपिक सब टाइटल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, माँ बाप के हिस्से। सबसे पहले औलाद के हिस्सों का पता चला आयत के शुरू से लेके अब तक, अब दूसरी सूरत है माँ बाप के हिस्से। औलाद के हिस्सों की जिस तरह चार सूरतें थी ना, इसी तरह वालदैन के वारिस बनने की तीन मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। नंबर एक, माँ बाप भी मौजूद हैं और मरने वाले की औलाद भी हो, चाहे बेटा हो या बेटी, एक हो या ज़्यादा, मरने वाले की जब अपनी औलाद होती है तो उसके माँ बाप को छठा हिस्सा मिलता है, 1/6, 1/6। बाकी जो 4/6 है ना, वो औलाद में फिर उसी तकसीम से होगा जो ऊपर जिक्र हो गई। दूसरी सूरत माँ बाप के वारिस बनने की क्या होती है कि सिर्फ माँ बाप वारिस हों और मरने वाले की औलाद ना हो। बस अनमेरिड था भी, लड़का यंग था, कमाता था लेकिन शादी नहीं हुई, या दूसरी सूरत है कि शादी भी हुई लेकिन बच्चे नहीं थे, या कोई और सिचुएशन। तो दूसरी सिचुएशन क्या है कि मरने वाले की औलाद नहीं थी और बाकी भाई बहन भी ना हो, यानी अपने माँ बाप का अकलौता बच्चा था, इसके अपने ना भाई बहन हैं और ना बच्चे हैं, तो इस सूरत में इसकी दौलत को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। एक हिस्सा माँ को मिल जाएगा 1/3, माँ का भर गया, 1/6 कम होता है, 1/3 ज़्यादा होता है, ये तो समझते हैं ना। एक ये पेंसिल है ना, इसके आप तीन टुकड़े करेंगे ना तो ये टुकड़े बड़े बनेंगे, राइट, और अगर आप इसके छः हिस्से करेंगे ना तो हर हिस्सा छोटा होगा, तो माँ बाप का 1/6 कम है 1/3 की नस्बत, तो माँ के लिए 1/3 होगा और बाकी ये जो 2/3 है ना, ये पूरे का पूरा बाप को मिल जाएगा। दोहराती हूँ, वालदैन को हिस्सा मिलने की दूसरी सूरत क्या है कि मरने वाले के बच्चे नहीं थे और भाई बहन भी नहीं थे, $100 छोड़े उसने, मिसाल है, 100 के तीन हिस्से किए जाएंगे, एक हिस्सा माँ को दे देंगे 33 की सूरत में और पीछे 66+ जो है ये बाप को दिया जाएगा। तीसरी सिचुएशन माँ बाप को हिस्सा मिलने की क्या है कि मैयत की औलाद तो नहीं है लेकिन इसके और भाई बहन हैं, यानी आप ये समझ सकते हैं कि इसकी माँ और बाप को दूसरे बच्चों से भी हिस्सा मिलना है बाद में, तो इस सूरत में माँ को फिर दोबारा 1/6 मिलेगा और बाकी 5/6 जो है ना, ये सारे का सारा बाप को मिल जाएगा। ठीक है। फिर देखिए कि रिश्तेदार भी, बहन भाई जो होते हैं ना, ये तीन किस्म के होते हैं हमारी जुबान में, आप समझते हैं। सगे रिश्तेदार, माँ भी एक बाप भी एक। दूसरी सूरत होती है कि माँ फर्क है तो बाप एक है, और तीसरी सूरत है बाप एक और माँ फर्क। ठीक है, ये तीनों सिचुएशन इसका तस्करा आगे आएगा। पढ़िए जरा इस हिस्से को। वली अबा वही ही, और उसके माँ बाप के लिए। यहाँ अबा वही ही से मुराद माँ और बाप दोनों है। लिकुल्ली वाहिद मिनहुमा, उन दोनों में से हर एक के लिए, यानी माँ और बाप के लिए। क्या है असुदुस, छठा हिस्सा, 1/6। याद रखिए कि 1/6 माँ को मिलेगा, 1/6 बाप को मिलेगा। मिम्मा तरका, जो वो छोड़ गया, कौन, बेटा जो मर गया। इन कान लहू वलत, जबकि उसकी औलाद हो। वलत से यहाँ मुराद बेटे और बेटियाँ दोनों हैं। ये पहली सिचुएशन मिल गई। माँ बाप के हिस्सा मिलने की पहली सूरत क्या है कि मरने वाले की अपनी औलाद भी थी, तो मरने वाले के माल में से 1/6 माँ को मिल जाएगा, 1/6 बाप को मिल जाएगा, और बाकी सारी औलाद को मिलेगा, जो कि ऊपर तस्करा हो गया। दूसरी सूरत है कि मरने वाले के बच्चे नहीं। फ़ाइलम यकुल लहू वलदुन, हु से मुराद यहाँ मैयत है, बच्चे नहीं है। वह वरिसहु अबावाहु, और उसके वारिस उसके माँ बाप हैं। अब क्या होगा, फली उम्मी ही सुलुस, माँ को 1/3 मिल गया और बाकी नहीं बताया हुआ, या आप अपने पास आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, बाकी 2/3 बाप को मिल जाएगा। तीसरी सिचुएशन अब यहाँ से शुरू हो रही है, सुलुस के बाद आप नंबर 3 लगा लें। थर्ड सिचुएशन क्या है, फ़ैन कान लखू इख्वतन, और अगर हों उसके कई भाई, मरने वाले के कई भाई हैं, तो फली उम्मे हिस्सुदुस, माँ को 1/6 मिलेगा, लेकिन ये सब कहाँ होगा, मिम बादी वसीयती यूसी बिहा। यहाँ से अब मौजू बदल रहा है, ये सारे हिस्से औलाद के और माँ बाप के कब मिलेंगे, वसीयत जो उसने की उसको पूरा करने के बाद, औ दैन, या उसके ऊपर अगर कर्ज है तो। तरतीब क्या होगी, एक शख्स मरा, उसके ऊपर कर्ज भी है, उसने कुछ वसीयत भी की है, और हिस्से भी बंटने हैं। सबसे पहले उसका कफन दफन किया जाएगा, जो मारूफ तरीके से, कोई और करना चाहे तो कोई हर्ज की बात नहीं। फिर देखा जाएगा कि कर्ज था उसके सर पे कि नहीं। यहाँ लफ्ज़ वसीयत पहले है, कर्ज बाद में है, लेकिन प्रैक्टिकली अमलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमें सुन्नत मिलती है कि आपने कर्ज पहले अदा किया, और सिंपल बात है कि कर्ज पहले अदा होगा ना, अगर मरने वाले की दौलत सारी कर्ज अदा करने में निकल गई तो बाकी सब हाथ देखते रहे, हाथ मलते रहे, फिर कोई वसीयत पूरी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ लफ्ज़ आया वसीयत का, हमारे यहाँ ये भी लफ्ज़ बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर है। क्या वसीयत करूँ, अच्छा सारा दे जाऊँ, किसको दूँ, अच्छा अपने बाद दे दूँ। तो देखिए कि वसीयत के लिए भी इस्लाम ने कानून बना दिया, मैं इसको बाद में डिस्कस करूँगी, बस अभी लफ्ज़ वसीयत लिख लें। इतनी बात को दोहराती हूँ, सारी आयत जहाँ तक हुई है उसको दोबारा देखें। कोई शख्स मरा, बेटे और बेटियों को, बहुत सारे बच्चे हैं, बेटों को दुगना बेटी से। दूसरी सूरत है सिर्फ बेटियाँ, तो 2/3 मनी को सारी बेटियों में बराबर का तकसीम किया जाएगा। तीसरी सूरत है मरने वाले की बस एक ही बेटी है, तो आधी जायदाद उस एक को दे दी जाएगी। उसके बाद चौथी सूरत, जो इस किताब कुरान की आयत में नहीं है लेकिन ऑब्वियसली समझ आ रही है और हदीस से मिलती है, कि बेटा एक ही हो तो पूरे का पूरा बेटे को मिलेगा। इसके बाद दूसरा हिस्सा है वालदैन के हिस्सों का, मरने वाले के बच्चे भी हों, बेटे बेटियां कितने भी हों, नो प्रॉब्लम, तो माँ बाप को टोटल मनी का 1/6 माँ को मिलेगा, फिर टोटल मनी का 1/6 बाप को मिलेगा, फिर इन दोनों को जो मिला इसको माइनस करेंगे मनी के अंदर से, फिर जो पीछे रह गया उसको बेटे और बेटियों में ऊपर वाली निस्बत से बांट देंगे। दूसरी सूरत है कि मरने वाले के बच्चे नहीं हैं और भाई बहन भी नहीं है, सिर्फ माँ और बाप को दौलत देनी है, तो सारी जायदाद के 3 हिस्से किए जाएंगे, एक हिस्सा माँ को मिल जाएगा, 2 हिस्से बाप को मिल जाएंगे। तीसरी सूरत क्या है कि मरने वाले के बच्चे तो नहीं हैं लेकिन और भाई बहन हैं, तो फिर माँ को 1/6 मिलेगा, क्योंकि माँ को दूसरे बच्चों से भी तो उम्मीद है ना आने की, लेकिन बाकी पांच छह जो हिस्से होंगे 6 में से वो बाप को मिल जाएंगे। अब ये बातें होंगी कब, जिसमें सबसे पहले कर्ज को अदा किया जाएगा और फिर वसीयत को। लफ्ज कर्ज पहले क्यों नहीं आया, वसीयत पहले क्यों आई, इसलिए कि पहली बात है कि कर्ज हर मैयत पे नहीं होता, इल्ला माशाल्लाह आज के दौर में इसका नहीं पता, लेकिन अमूमन लोगों के ऊपर कर्ज नहीं होता, लेकिन वसीयत अक्सर लोग करते हैं, एक वजह कर्ज को बाद में लिखने की। दूसरी वजह यह है कि जिसने कर्ज लेना होता है वो तो खुद ही आ जाते हैं तकाजा करने, लेकिन जिनके नाम पे वसीयत की जाती है अक्सर उनको पता भी नहीं होता कि हमें वसीयत में से कुछ मिला भी है कि नहीं, ठीक है। और अगली बात याद रखिएगा वसीयत के बारे में कि वसीयत वारिस के हक में नहीं की जा सकती। बस एक बच्चे को तो मिलना ही था हिस्सा अपने बाप के हिस्से में से, और बाप साथ कह दे कि इस मेरी जायदाद में से 1/3 वैसे भी इस बच्चे को दे दें, ला वसीयत अली वारिस, बेटों बेटियों के बारे में वसीयत नहीं की जा सकती, माँ बाप के बारे में वसीयत नहीं की जा सकती, शौहर बीवी के बारे में वसीयत नहीं की जा सकती। वसीयत किसके लिए होगी, जिसको आम हालात में नहीं मिलना था, वो भाई हो सकता है, वो बहन हो सकती है, वो भांजा हो सकता है, वो भतीजा हो सकता है, वो पोता हो सकता है, वो फूफी खाला मामी हो सकती है, वो कोई ट्रस्ट हो सकता है, कोई मस्जिद हो सकती है, मदरसा हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, एनी वेयर कर सकते हैं। ये पहली शर्त है वसीयत की। दूसरी शर्त वसीयत की क्या है कि 1/3 मनी के अंदर ही अंदर होगी। देखिए इंसान जो माल खर्च करता है ना, इसकी अमूमन 3 सूरतें होती हैं। एक सूरत को कहते हैं हिबा करना, गिफ्ट कर दिया किसी को। जिंदगी में आप कोई भी माल अपना देते हैं ना, इसको हिबा करना कहते हैं, ये ज़िंदगी में होता है। इसके अलावा 2 मुख्तलिफ चीज़ें, नंबर 1 वसीयत और दूसरा है विरसा, इनका ताल्लुक मरने के बाद से है। कोई अपनी ज़िंदगी में अपने माल को पूरे का पूरा उठा के किसी को दे दे, उसकी मर्जी है, नो प्रॉब्लम। वो अपने माल को अपने इस्तेमाल में लगा ले, ठीक है, ज़कात देता रहे, फिर जितना मर्जी खर्च करता रहे, कोई हरज की बात नहीं है। बच्चों को दे तो क्या होगा हिबा की सूरत में, यानी आप माँ बाप हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, आप बच्चों को दें तो इसमें इंसाफ करें। एक सहाबी थे, उन नुमान बिन बशीर, तो उनके बारे में आता है कि उन्होंने बताया कि मेरे बाप ने कुछ देने का इरादा किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तूने बाकी बच्चों को भी दिया है, तो कहा बाकियों को तो नहीं दिया, तो कहा कि फिर अल्लाह से डरो, अगर सबको देना है दो, नहीं तो इससे भी वापस ले लो, और कहा कि मैं झूठ पर या जुल्म पर गवाह नहीं बनता। बाकी रह गई बात ज़रूरियात, बच्चों की ज़रूरतें मुख्तलिफ होती हैं। आप देखिए कि एक बच्चा ज़्यादा खाना खा सकता है, कम, एक 2 साल का बच्चा, एक माशाल्लाह 20 साल का बच्चा है, ज़रूरियात का फ़र्क है ना। ज़रूरियात पे जो खर्च करना है उसमें एक कोई पकड़ नहीं, एक बच्चे पे महीने का 1,000 खर्च हो रहा है, दूसरे पे 200 हो रहा है, एक कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, एक अभी घर में, नो प्रॉब्लम, एक मेडिकल कर रहा है, एक जस्ट बैठ के एमए या बीए कर रहा है, फ़र्क है एजुकेशन में, नो प्रॉब्लम। ज़रूरियात पे जो बच्चों की लगता है ना, उसमें कमी बेशी का फ़र्क नहीं, एक बच्चा ज़्यादा खाता है उसको ज़्यादा भूख लगती है, एक को कम लगती है, और लड़कियां अमूमन कम खाती हैं, लड़के ज़्यादा खाते हैं, तो अब आप कहें कि हम हिसाब करें, रोटी तोड़ के दें कि आधी तुम्हें दी तो आधी तुम्हें देनी, ऐसी कोई बात नहीं, ज़रूरियात ज़रूरत के मुताबिक होती हैं। लेकिन जहाँ हिबा की बात है ना, गिफ्ट, उसमें इंसाफ होना चाहिए, बराबर की बात हो, सबको बराबर दे, और या फिर विरासत के हिसाब से हिबा करे। अब बाज़ लोग क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी में मिसाल है कि बाद में झगड़े होंगे, बेटियों को हिस्सा मिलेगा, लो जी पकड़ो मैं अपना पूरा माल अपने इस बेटे को देती हूँ, अकलौता बेटा था और 3 बेटियाँ थी, बेटियों को दिया तो दूसरे ख़ानदान में चला जाएगा, तो मरने से पहले ही अपना सारा बेटे के नाम लगा दें, ये इजाज़त नहीं है इसकी, ये हिबा तो होगा। विरासत का ताल्लुक ज़िंदगी से नहीं है। बस लोग कहते हैं फ़लाँ ने अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद बांट दी, विरासत बांट दी, नहीं बटेगी, वो हिबा होगी। वसीयत और विरासत का ताल्लुक मरने के बाद है, ठीक है। अब वसीयत के लिए अल्लाह ताला ने इसको विल के लफ्ज़ से इस्तेमाल किया, लेकिन इस्लाम में विल ऐसे नहीं जैसे क्रिश्चियनिटी में कि सारी की सारी कह दो किसको देनी है, नहीं, 1/3 इसकी एक्सट्रीम है। और इसके बारे में एक रिवायत भी आती है कि एक सहाबी हैं, کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوا، مرنے کے قریب ہو گیا، اللہ کے نبی میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی، میرے پاس بہت مال ہے اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا دو تہائی دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا نصف دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تمہیں پھر میں نے کہا تہائی دے دوں تو فرمایا تہائی دے سکتے ہو، ون تھرڈ، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے، اور اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ، وہ لوگوں سے مانگتے پھریں، بے شک جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس نیوالے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور یہ سوال پوچھنے والے یا جو مرنے والے تھے، یہ سعد بن وقاص کا نام آتا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد اپنے مال میں سے زیادہ سے زیادہ جو مال انسان ڈیووٹ کر سکتا ہے صدقے میں کسی اور کو دینے میں، وہ ون تھرڈ ہے۔ اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ کاش لوگ ون فورتھ پہ ہی رک جائیں، یعنی 100 میں سے 33 دینے کی بجائے 25 ہی دیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ون تھرڈ کی بھی جو اجازت دی تھی وہ کراہت کے ساتھ دی تھی۔ یہ ہے انصاف اسلام کا۔ آپ کی زندگی میں مال آپ کا اپنا ہے، آپ اس مسجد کو دیں، اس مدرسے کو دیں، ادھر خریدیں، لیں، دین کو دیں، دنیا کو دیں، آپ کی مرضی۔ دنیا پہ لگائیں گے تو حساب ہوگا، دین کو دیں گے تو وہ کل آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو خوب کماؤں کھاؤں، اپنی زندگی میں عیش عشرت کروں، کل میری جب موت ہو جائے تو میرا سارا پکڑ کے کسی ٹرسٹ کو دے دو۔ اجازت نہیں ہے۔ جب ہم مرتے ہیں نا تو ہمارا مال ہمارا رہتا ہی نہیں ہے، وہ ورثہ کا ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اگر شوق فرماتے ہیں ہم کے کچھ دینا ہے تو میکسیمم ون تھرڈ دے سکتے ہیں، اور اس کی شرط بھی یہ کہ وہ ان کو نہ دیں جن کو پہلے ہی مل رہا ہے، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ماں کو، باپ کو اور بیوی کو۔ اسلام نے جو لوگوں کے حصے فکسڈ کر دیے نا، وہ تین قسم کے لوگ ہیں، اولاد، ماں باپ اور شوہر بیوی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں شوہر اور بیوی کی بات کر رہے ہیں، لیکن بیچ میں ذہن میں اٹھنے والے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، اور سوال کیا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے بوڑھے ماں باپ کو دینے کی؟ چھٹا حصہ ان کو دے دو بس۔ اگر کسی کے پاس آپ حساب لگا کے دیکھ سکتے ہیں کہ 6 کروڑ روپے چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اس میں سے کوئی 1 کروڑ باپ کو دے دے، 1 کروڑ ماں کو دے دے، یہ بوڑھے کیا کریں گے؟ ذہن میں سوال اٹھتا ہے نا، اب ان کی تو ضرورتیں نہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں ان سے تو باقی بھائی بہنوں نے چھین کے لے جانا ہے، ہاں؟ تو اللہ تعالیٰ اب اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو، آبا اکم و ابنا اکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، تم تو نہیں جانتے کہ تمہیں نفع دینے کے حساب سے ان میں سے کون بہتر ہے۔ تمہاری عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ 1 کروڑ بھی جو بوڑھے باپ کو جانا ہے، یہ میرے جوان بیٹے کو ہی مل جائے، کیونکہ اس کی ضروریات ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہیں، وہ کاروبار سنبھالے گا، اور عموماً بیٹے ہی باپ کے کاروبار کو آگے ایز اٹ از چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب بوڑھے باپ نے تو لے کے بابا جی نے پتہ نہیں کس کس کو دے دینا ہے، عقل نہیں مانتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ، لیکن مجھے پتہ ہے کہ بوڑھا باپ تمہارے حق میں کیسے فائدہ مند ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اس کی تو خواہشات پوری ہو چکی ہیں، اب اس کو مال خرچ کرنے کا بھی کوئی شوق نہیں، تو وہ بوڑھا۔ دوسری بات ہے کہ اس کو جوان اولاد کی موت کا صدمہ پہنچا ہے، باپ کی زندگی میں بیٹا مر جائے یہ باپ کے لیے بہت تکلیف کا سبب ہوتا ہے، تو امید کرو کہ جو بوڑھے باپ کو چھٹا حصہ ملا ہے نا، وہ صدقہ جاریہ میں ہی لگائے گا، وہ اسی غم میں رکھے گا کہ میرا بیٹا مر گیا، چلو یہ میں ایک جگہ وقف کر دوں، اس سے ایک جگہ لے لوں، اس کو ڈیووٹ کر دوں۔ تو آج تو تمہیں دنیا کے اعتبار سے جوان بچوں کو دینا اچھا لگ رہا ہے نا، لیکن اللہ کی نگاہوں میں بوڑھے باپ یا ماں کو دینا زیادہ بہتر، کیونکہ ہر فائدہ وہ نہیں ہے جو سامنے دکھے۔ اسی سے آپ دیکھیے کہ یہ تو زندگی کے بعد کی باتیں ہیں نا، زندگی میں بھی بعض لوگ بوڑھے ماں باپ کو دیتے ہوئے ہاتھ کھینچتے ہیں، اور جوان اولاد کے لیے گل چھڑے اڑانے کے لیے خوب دے دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جس طرح مرنے کے بعد ماں باپ کو دینے کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے، تو زندگی میں کیا اہمیت ہوگی؟ ایک حدیث اگر یاد ہو جائے نا، تو بہت ساری خواتین کو تو اس سے نصیحت آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انت و مالک لی ابی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا۔ یہی حکم بیٹے کے لیے، یہی بیٹی کے لیے، یعنی باپ بیٹے کے مال کا اگر پورا بھی زندگی میں حق رکھتا ہے یا اس سے استعمال کرتا ہے، یا بیٹا اپنا پورا مال بھی ماں باپ پہ لگا دیتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں بعض تو چلیں اور باتیں چھوڑیں، بوجھل باتیں ہیں، एक बड़ी रखीक सी बात है इस आयत के ऊपर, और वो क्या कि बाज बीवियों का बड़ा दिल घुटता है जब उनके शौहर अपनी माँ और अपने बापों को देते हैं। बाज बड़ी गहरी नज़र रखती हैं, चेकबुक पे नज़र रखी, अकाउंट पे नज़र रखी, कितना भेजते हैं, कितना देते हैं। और सास बहू का रिश्ता कुछ इस तरह का हम लोगों ने बना दिया कि उसकी वजह से बहुत ही तकलीफ़ होती है बीवियों को जब शौहर माँ को देते हैं। तो ऐसी सारी औरतें जिनका दिल इस मौके पर तंग होता है, ख़ुद तो वो हज़ारों के जेवर बनाएं तो कोई बात नहीं, कपड़े बनाए कोई बात नहीं, घर में फर्नीचर आए तो कोई बात नहीं, और अगर बूढ़ी माँ को कुछ कैश दे दिया कि चलो ये भी अपनी ख्वाहिशात पूरी करें तो उस पर वो बोझ हो, तो उनके लिए यहाँ एक बहुत ही बड़ी बात है। और वो क्या कि शौहर को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला हर एक के शौहर को सलामत रखे। लेकिन अगर उस मर्द का इंतकाल हो जिसकी बीवी भी है और माँ भी है, माँ को कितना दिल मिल रहा है? 1/6, यानी इस पेंसिल के 6 हिस्से करेंगे तो इतने बड़े बड़े हिस्से तकरीबन बनेंगे ना, ये माँ का हिस्सा है। और बीवी को कितना मिलना है अगली आयत में आ रहा है, वो 1/8 होता है, वो इससे छोटा मिलेगा। एक मर्द के मरने के बाद उसके छोड़े हुए माल में से उसकी बीवी को, उसकी लाडली चहेती मिसेस और बेगम और जो नाम भी आप उसको दे दें, उसको उस बूढ़ी सिसकती हुई माँ से कम मिलता है, 8वां हिस्सा है। बच्चे ना होंगे तो 1/4 मिलेगा। तो क्या पता चला कि जब मरने के बाद उनको हमसे ज़्यादा मिल जाना है तो अपनी ज़िंदगी में दिल तंग क्यों करते हैं? कभी अपने शौहरों को इस बात पे मत रोकें कि अपनी जन्नत की खिड़कियां बंद कर दें। अगर वो बूढ़ों को खुश करेंगे देंगे तो वो दुआएं आपको ही देंगे। देखिए, सास आप अपने बेटे को दुआ देगी तो क्या वो आपके शौहर को दुआ ना मिली? और जो बेटा अपने माँ बाप को देगा तो दुआ लेगा ना? आपको नहीं पता कि आपके दिल के तंग होने के बावजूद आपके शौहर अपनी माँ बाप को जो देते हैं उनकी जो दुआएं मिलती हैं वो शौहर से ज़्यादा आपको ही मिलती हैं। अगर माँ कहती है बेटा अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, तो क्या उसने बहू को नहीं दुआ दे दी कि तेरा सुहाग सलामत रहे? लिहाजा इन रिश्तों में अल्लाह ताला कहते हैं दिल ना तंग किया करो। यहाँ मैंने ये बात इसलिए पहले कर दी कि आबाउकुम व अबनाउकुम का जिक्र था कि बूढ़ों को देना बड़ा ही मुश्किल लगता है। लोग समझते हैं अब इनको दुनिया से बस जाना चाहिए, हमें यही दे दें, अम्मा क्या करोगी, ये मुझे ही दे दो, ये चूड़ी मुझे दे दो, ये कपड़ा मुझे दे दो। अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, फरीदत मिन अल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है, किसी इंसान का कानून नहीं है। इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, उसको खूब पता है और खूब हिकमत है उसकी कि किसको कौन कितना दे रहा है। ये कोई जज्बाती फैसले नहीं है, कोई अल्लाह ताला दुश्मन नहीं है औलादों का या माँ बाप को कोई फेवर नहीं दे रहा, बल्कि अल्लाह का हुक्म है। अब यहाँ तक औलाद और माँ बाप के हिस्से पूरे हुए, जितनी भी बात समझ आ गई उसको गनीमत जाने। अगली आयत में अब शौहर और बीवी के हिस्से हैं, ज़ौजैन बोलते हैं इनको। तिलावत सुनेंगे इन आयत की।
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما